तारीख 12 जुलाई दिन रविवार। नमस्कार, भारत के साथ मैं फैसल मोहम्मद अली। विंबलडन में सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने जीता महिला डबल्स का खिताब। सानिया पहले से दिख रही थी आश्वस्त।
On my 11th year, if I can say I'm number one at something that I do and I've dreamt of, I think it's a pretty good career. So,
Greece ke taza qarz prastav par Eurozone mein charcha jari, lekin Greece ke voter mehsoos kar rahe hain khud ko chhala hua. Aur sunwayenge ek baatcheet RAW ke poorv pramukh AS Dulat ke saath. Kandhar viman apharan par kaha,
maine akhri ye lafz istemal kiya hai goof up, to mera kehne ka sirf matlab itna tha ki Amritsar mein ek opportunity thi.
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अनुराग शर्मा से। भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने विंबलडन में महिलाओं का डबल्स खिताब जीत लिया है। विंबलडन के सेंटर कोर्ट पर 2 घंटे 47 मिनट तक चले मुकाबले में सानिया और हिंगिस ने रूस की येकातेरिना मकारोवा और एलेना वेज़नीना को 5-7, 6-7, 5 से हराया। ये 28 साल की सानिया के लिए महिलाओं का पहला डबल्स ग्रैंड स्लैम खिताब है, जबकि 34 साल की मार्टिना हिंगिस के लिए ये 10वां ग्रैंड स्लैम है। यूरोजोन के देशों के वित्त मंत्री चाहते हैं कि ग्रीस राहत पैकेज के बदले सुधार करने के वादों के प्रति और गंभीरता दिखाए। बेल्जियम के ब्रसेल्स में शनिवार को बैठक के लिए पहुंचे कई मंत्रियों ने ग्रीस के खर्चों में कटौती के प्रस्ताव के अमल में लाने पर शंका जाहिर की। ऑस्ट्रिया के वित्त मंत्री हंस यर्क शैलिंग ने कहा, ये तो बिल्कुल प्रगति है कि जिस पर सहमति हुई थी ग्रीस ने वो किया, और वो भी जनमत संग्रह के बाद। लेकिन जो चीज़ नहीं है वो है ज़्यादा जानकारी। जो विवाद का बिंदु होगा वो ये कि ग्रीस क्या गारंटी देगा कि ये प्रस्ताव वाकई अमल में लाए जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि सूचियाँ भेजी जाती हैं लेकिन कदम नहीं उठाए जाते। हंस यर्क शेलिंग के शब्द। यूरोजोन के देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक अब रविवार सुबह फिर शुरू होगी। इसके बाद यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक भी होगी। बोस्निया के राष्ट्रपति ने सर्बिया के प्रधानमंत्री पर एक कार्यक्रम में हुए हमले की निंदा की है। सर्बिया के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर वुचिच सेब्रेनिस्ता नरसंहार की 20वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में बोस्निया पहुंचे थे। वुचिच ने कार्यक्रम में पहुंचने से पहले कहा था कि इसे नरसंहार न कहा जाए। बोस्निया के राष्ट्रपति की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वुचिच बोस्निया फिर से मेलजोल बढ़ाने की भावना लेकर आए थे। वुचिच से धक्का मुक्की हुई और उनके सिर पर एक पत्थर भी मारा गया, जिसके बाद वो कार्यक्रम से चले गए थे। 1995 में सर्ब सैनिकों ने लगभग 8,000 मुस्लिम पुरुषों और लड़कों की हत्या कर दी थी। ये दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा जनसंहार था। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खमेनेई ने कहा है कि अमेरिका वैश्विक घमंड का सच्चा प्रतीक है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान के राजनयिक वियना में अमेरिका और अन्य ताकतों के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत में व्यस्त हैं। इस बातचीत का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखना है। बातचीत की 2 समय सीमा पहले ही निकल चुकी है। बातचीत से निकलने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि अब भी कई मुश्किल मुद्दे हल किए जाने हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में इटली के वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के बाद मिस्र के प्रधानमंत्री इब्राहिम महलब ने कहा है कि उनका देश युद्ध जैसे हालात का सामना कर रहा है। खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। धमाके में एक व्यक्ति मारा गया था और कुछ लोग जख्मी हुए। घायलों में इमारतों की सुरक्षा कर रहे पुलिस वाले भी शामिल हैं। इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि मुसलमानों को कॉन्सुलेट जैसी जगहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ और भी हमले हो सकते हैं। पूर्वी अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि इस्लामिक स्टेट समूह के नेता की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा आप सुन रहे हैं, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी लाइव।
और बात करेंगे विंबलडन की, जहां कल का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। सानिया मिर्जा महिला डबल्स में विंबलडन चैंपियन बन गई हैं। उन्होंने स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर फाइनल में रूसी खिलाड़ियों की जोड़ी को हराया। माफ़ कीजिएगा, सानिया इस साल डबल्स में दुनिया की पहले नंबर की खिलाड़ी बन चुकी थी और ये महिला डबल्स में उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। सानिया की इस शानदार उपलब्धि की पूरी जानकारी दे रहे हैं लंदन से अपूर्व कृष्ण।
सानिया मिर्जा पिछले एक दशक से भारत में महिला टेनिस का चेहरा रही हैं। कल रात उन्होंने भारत के टेनिस इतिहास में एक नया अध्याय लिख डाला। वे विंबलडन में महिला डबल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। कल विंबलडन के जिस सेंटर कोर्ट पर सुबह सेरेना विलियम्स ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता था, उसी सेंटर कोर्ट पर सानिया अपनी जोड़ीदार स्विस खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस के साथ डबल्स के फाइनल में उतरी। दुनिया की पहली नंबर की जोड़ी सानिया और हिंगिस का सामना दूसरी सीड की रूस की खिलाड़ियों इकैटरीना मस्कारोवा और एलेना वेस्निना से था। मुकाबला कांटे का था। पहला सेट रूसी खिलाड़ियों ने जीता, मगर सानिया और हिंगिस ने दूसरा और तीसरा सेट निकाल बाजी अपने नाम कर ली। उन्होंने 2 घंटे 25 मिनट तक चला मैच 5-7, 7-6, 7-5 से जीतकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। सानिया और हिंगिस इस बार विंबलडन में काफ़ी उम्मीद लेकर आई थीं। दोनों ने इस साल अप्रैल में अमेरिका में फैमिली सर्किल कप जीता था, जिसके बाद सानिया डबल्स की विश्व रैंकिंग में दुनिया की पहले नंबर की खिलाड़ी बन गईं और यह सम्मान पहली बार किसी भारतीय महिला खिलाड़ी को हासिल हुआ था। उनकी जोड़ीदार 1997 की विंबलडन विजेता मार्टिना हिंगिस डबल्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं, मगर शीर्ष रैंकिंग हासिल करने के बाद दुनिया की पहली नंबर की जोड़ी के लिए उनका पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन निराशाजनक रहा, जहां वो क्वार्टर फाइनल में 7वीं सीड की जोड़ी से हारकर बाहर हो गईं। मगर विंबलडन शुरू होने से पहले बीबीसी के साथ एक खास बातचीत में सानिया ने कहा कि उनके करियर में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहे हैं।
Yeah, it's been a few, you know, amazing years. I've had an 11-year long professional career and you know, in 11 years.
हाँ, ये बड़ा अच्छा समय रहा। मैं 11 साल से पेशेवर टेनिस खेल रही हूँ और इस 11वें साल में अगर मैं पाती हूँ कि मैं पहले नंबर पर हूँ तो लगता है कि मेरा करियर अच्छा रहा। बीच में उतार चढ़ाव जरूर आए, चोट लगी, उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे। आपको उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। सानिया मिर्जा के शब्द। सानिया ने 2005 में ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में कदम रखा था और वे चारों मुकाबलों में सिंगल्स मुकाबलों में खेला करती थीं। तब वो 18 साल की थीं और उस साल वे US ओपन के चौथे दौर तक पहुंची, जो उनका अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। विंबलडन सिंगल्स में वे कभी भी दूसरे दौर से आगे नहीं जा पाईं। बाद के वर्षों में चोट से भी उनका खेल प्रभावित हुआ और 2012 के बाद से उन्होंने सिंगल्स खेलना छोड़ दिया और केवल डबल्स मुकाबलों में हिस्सा लेने लगी। मिक्स डबल्स में उन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती। महेश भूपति के साथ उन्होंने 2009 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन और 2012 में फ्रेंच ओपन जीता था और पिछले साल ब्राज़ील के ब्रूनो सुआरेस के साथ US ओपन जीता, मगर महिला डबल्स में अभी तक जीत उनसे दूर थी। सानिया ने विंबलडन जीतकर कल ये कमी पूरी कर दी। अपूर्व कृष्ण, BBC लंदन।
और लंदन से चलें अब ग्रीस। यूरोजोन के 18 देशों के वित्त मंत्री कल देर रात तक ब्रसेल्स में ग्रीस के ताज़ा कर्ज की मांग और आर्थिक सुधारों के प्रस्ताव पर चर्चा करते रहे। ग्रीस 3 साल के लिए $59 अरब से अधिक के कर्ज की मांग कर रहा है, जिसके बदले उसने खर्चों में कटौती और राजस्व बढ़ाने का वायदा किया है। ग्रीस अपने कर्ज की पिछली किस्त नहीं चुका पाया था, लेकिन यूरोजोन के नेता कह रहे हैं कि ग्रीस पर भरोसा करना ज़रा मुश्किल है। प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने हाल में जनमत संग्रह करवाया था। उन्होंने जनता से खुद ही कर्जदारों की शर्तों को मानने से मना करने को कहा और अब वो उन्हीं शर्तों को लागू करने का वादा कर रहे हैं। BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुने अनुराग शर्मा से।
आज यूरो ग्रुप के नेताओं और फिर यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों को ग्रीस के कर्ज संकट पर फैसला करना है। बात ग्रीस के यूरोजोन से बाहर जाने तक पहुंच सकती है। उन्हें ग्रीस सरकार के टैक्स बढ़ाने, पेंशन में कटौती करने और निजीकरण जैसे प्रस्ताव पर भी विचार करना है, लेकिन यूरोजोन के वित्त मंत्रियों का कहना है कि उन्हें ग्रीस को लेकर शंकाएं हैं। जर्मनी के वित्त मंत्री वोल्फगैंग शोएबले का कहना था कि ग्रीस सरकार के वादे पर यकीन नहीं होता। उनका कहना था, समस्या यह है कि बीते साल के अंत तक हमें काफी उम्मीद थी और उसे तोड़ दिया गया। एक हफ्ता भी नहीं बीता उस जनमत संग्रह को जिसमें कोई शर्त रखने के खिलाफ फैसला हुआ था, और अब ये उसके उलट बात कर रहे हैं। वोल्फगैंग शोएबले के शब्द। हालांकि ग्रीस के आर्थिक मामलों के मंत्री योर्गस स्टथेकिस का कहना है कि अगले 24 घंटे में कोई करार संभव है। योर्गस स्टथेकिस कह रहे थे कि हमें लगता है कि कुछ कदम तो काफी कठिन हैं। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुल मिलाकर हालत ये है कि जनमत संग्रह से पहले जो बातें थी उनसे काफी हद तक सुधार हुआ है। ग्रीस की संसद ने शनिवार को सरकार के खर्च में कटौती और निजीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। हालांकि इस प्रस्ताव में कई बातें ऐसी हैं जो सिरिज़ा पार्टी के चुनावी वादों से मेल नहीं खाती और कई बातें ऐसी हैं जो जनमत संग्रह से बिल्कुल उलट हैं। एथेंस में लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा भी है। ظاہر ہے گریس کی آرتھک حالت بہت خستہ ہے، گریس کے بینک اب بھی بند ہیں، اسے 53.5 ارب یورو کا قرض چاہیے اور 20 جولائی تک 3 ارب یورو کے قرض کی ایک اور قسط چکانی ہے۔ اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ جرمنی نے گریس کے سامنے یورو زون سے کچھ سمے کے لیے باہر ہونے اور 50 ارب یورو کی سمپتی ایک الگ فنڈ میں رکھنے جیسے وکلپ رکھے ہیں، حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ گریس پر دباؤ بنانے کی رنیتی ہو سکتی ہے۔ ایسے میں فیصلہ چاہے جو ہو وہ نہ تو یورپی سنگھ اور نہ ہی گریس کے لیے آسان ہوگا۔
ادھر جب گریس قرض داروں سے ऋण کے بدلے آرتھک سدھاروں کا وعدہ کر رہا ہے، گریس واسی سرکار سے سہمت نہیں دکھ رہے ہیں۔ بی بی سی نے بات کی کچھ مہیلاؤں سے، اس مہیلا کا کہنا تھا،
لگتا
ہے کہ یہ بہت مشکل بھرا ہے اور گریس واسیوں کو بہت ادھک خرچ نہیں کرنا چاہیے، نوکریوں میں ہمیں بہت کم پیسے ملیں گے۔ وہیں سمندر کے کنارے بیٹھے اس ویکتی کا کہنا تھا، میرے اپنے وچار میں یہ سمجھوتا بہت اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے وکلپ کو کم کر دے گا، یووا ملک چھوڑ کر بھاگیں گے جو اچھی بات نہیں ہے، یوواؤں کے بنا دیش کا کوئی بھوشیہ نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے ویکتی کا کہنا تھا، پہلے جو مدد ملی ہے اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارے اوپر قرض کا بوجھ اور بڑھ جائے گا۔ گریس واسیوں نے پچھلے رویوار کو ملک میں کروائے گئے جنما سنگرہ میں قرض داروں کی شرطوں کو نکار دیا تھا۔ صوفیا زکاریا آدی ستارور سیریزا پارٹی کی سمرتھک ہیں اور جنما سنگرہ میں ان کا ووٹ نہ پر تھا، وہ خود کو چھلا ہوا محسوس کر رہی ہیں۔ ایک وامپنتھی دل کیسے ایسا کر سکتا ہے اور خرچ میں کٹوتی کے اس طرح کے قدم اٹھا سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سماج آرتھک یا منوجانک طور پر 3 سالوں کی اور کٹوتی برداشت کر پائے گا۔ میں چھلا ہوا محسوس کر رہی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں یورو زون سے الگ ہونے کو بھی منع نہیں کروں گی، میں یورو زون میں رہنے کے سیریزا کے فیصلے کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ گریس کے عام ناگرکوں میں سرکار کو لے کر موہ بھنگ کی استھتی۔ اور آپ بات کرتے ہیں بھارت سے کچھ۔ مدراس ہائی کورٹ نے ایک بلاتکاری اور پیڑتا کے بیچ مدھیستا کا نردیش دینے والا اپنا آدیش واپس لے لیا ہے، ساتھ ہی ہائی کورٹ نے ابھیوکت کو دی گئی ضمانت بھی رد کر دی ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ عمران قریشی۔
پچھلے مہینے مدراس ہائی کورٹ کے جج جسٹس پی دیوداس نے ایک الگ نظریہ اپناتے ہوئے بلاتکار کے ایک ابھیوکت کو یہ کہتے ہوئے انترم ضمانت دے دی تھی کہ وہ بلاتکار پیڑتا سے سمجھوتا کر سکیں، لیکن مدھیہ پردیش کے ایک کیس میں سپریم کورٹ کے نرنے کے بعد جسٹس دیوداس نے کل اپنے نرنے کو واپس لے لیا۔ انہوں نے ابھیوکت کی انترم ضمانت رد کر دی ہے اور یہ بھی آدیش دیا ہے کہ وہ کڈلور کی مہیلا کورٹ میں 13 تاریخ تک سرنڈر کر لیں۔ سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش کے کیس میں کہا تھا کہ بلاتکار کے بعد ابھیوکت کے ساتھ پیڑتا کا سمجھوتا مہیلا کے سمان کے خلاف ہے۔ ہم نے ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج جسٹس سنتوش ہگڑے سے پوچھا کہ کتنے جج اپنے نرنے واپس لیتے ہیں اور کیا یہ اس لیے واپس لیا گیا ہے کیونکہ قانونی جانکاروں نے آلوچنا کی تھی۔ انہوں نے کہا، ججز باقاعدہ اپنے نرنے واپس لیتے ہیں جب کبھی نیا ثبوت آتا ہے، اور یہ معاملہ تو انترم ضمانت کا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جج آلوچنا کو مد نظر رکھتے ہوئے نرنے واپس لے گا۔ یہ نرنے اس لیے لیا گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں سخت آلوچنا کی تھی۔ یہ تھے جسٹس سنتوش ہگڑے کے شبد۔ جسٹس سنتوش ہگڑے اس نئے نرنے کو سویکار کرتے ہیں، وہ اس لیے بھی کیونکہ بلاتکار کے معاملے میں کورٹ کے باہر کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ مدراس ہائی کورٹ کے وکیل گیتا رام شیشن کا بھی ماننا ہے کہ نیا نرنے سپشٹ ہے۔ ہائی کورٹ کے جج کا نرنے صرف انترم تھا، اور ان کے نئے نرنے نے یہ سپشٹ کیا ہے کہ ابھیوکت کے ضمانت کی یاچکا وہ پھر سے سنیں گے۔ یہ تھے گیتا رام شیشن کے شبد۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس معاملے میں پیڑتا بھی سمجھوتا کے خلاف تھی، آخرکار سپریم کورٹ کے آدیش پر ہی مدراس ہائی کورٹ کا نرنے آ ہی گیا۔ بنگلورو سے عمران قریشی۔
ہمارے سہیوگی ونیت کھرے نے عدالت کے فیصلے پر بات کی سپریم کورٹ کی جانی مانی وکیل اندرا جے سنگھ سے۔
یہ سب دکھاوا ہے क्योंकि अब उन्होंने वापस लिया, इसलिए कह रहे हैं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का मध्य प्रदेश का जजमेंट था उसमें लिखा गया है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए रेप केस में। इससे पहले भी यही तो कानून था और काफी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें लिखा गया है कि रेप केसेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मीडिएशन वैसे भी फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि उस महिला ने साफ बता दिया कि मैं मीडिएशन के लिए नहीं जाऊंगी और मीडिएशन बाय कंसेंट ही हो सकता है, तो वापस लिया ठीक है उसके लिए मैं खुश हूँ, लेकिन मेरा सवाल है इस जज ने जो ये सब हंगामा किया उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा।
लेकिन इंदिरा जी, एक फैसला लेकर अदालत और वापस ले लेना, ये कितना कॉमन है या रेयर है ये?
देखिए इसमें बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमारे कानून में बहुत सारे प्रोसीजर्स है। इंटरिम ऑर्डर मॉडिफाई हो सकता है, इंटरिम ऑर्डर विड्रॉ हो सकता है, लेकिन ये जिस तरीके से किया गया और वैसे तमिलनाडु लीगल एड बोर्ड ने भी मीडिएशन शुरू किया, ये क्या बकवास है
जी। लेकिन जज की एक ओपिनियन होती है, उसमें क्या एक्शन जैसी बात हो सकती है? उनकी एक ओपिनियन थी, उन्होंने एक ओपिनियन दी।
अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकती है, एक हाईकोर्ट जज का सिर्फ इम्पीचमेंट हो सकता है। और अफसोस की बात है कि महिलाओं के बारे में कोई कुछ सीरियसली लेता ही नहीं है। अगर कुछ फाइनेंशियल करप्शन की बात होती तो इम्पीचमेंट शुरू हो जाता।
अनुराग शर्मा, जल्दी से ये बताइए कि अखबार क्या कह रहे हैं।
जी फैसल साहब, आज के ज़्यादातर अखबारों ने दिल्ली सहित उत्तर भारत में हुई बारिश को प्रमुखता से छापा है। दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है शुक्र मनाएं आज है संडे। अखबार लिखता है कि बारिश अभी दो दिन मुश्किल बढ़ाएगी। नवभारत टाइम्स ने लिखा है आह बारिश आह मुसीबत। नवभारत टाइम्स के मुताबिक दिल्ली और NCR में 72 घंटों तक जोरदार बारिश होने के आसार हैं। अमर उजाला की सुर्खी है दिल्ली NCR में भारी बारिश, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। राजनीति की बात करें तो अमर उजाला ने खबर छापी है मुफ्ती की पार्टी में सोनिया को दावत। दैनिक भास्कर ने उधर दावा किया है, खबर छापी है कि पाकिस्तान ने यह दावा किया कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का हल बैक चैनल बातचीत से करेंगे। मद्रास हाईकोर्ट के बलात्कार मामले में मध्यस्थता संबंधी फैसला वापस लेने की खबर भी करीब करीब सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। और श्रोताओं को आस पड़ोस के देशों के कुछ अखबारों की बता दें वो क्या खबर बता रहे हैं, छाप रहे हैं। डॉन पाकिस्तानी अखबार है, उसका कहना है इस्लामिक स्टेट खोरसान के प्रमुख की मौत हुई है अफगान ड्रोन हमले में, जो हाफिज मोहम्मद सईद इस्लामिक स्टेट वाले।
बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सुनते हैं किन किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
रविवार को जिन खबरों पर नजर रहेगी उनमें ग्रीस के कर्ज संकट को लेकर यूरोपीय संघ के देशों के नेताओं की बैठक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजिकिस्तान यात्रा अहम है। आज पहले यूरो ग्रुप और फिर यूरोपीय संघ के 28 देशों के नेता ब्रसेल्स में मुलाकात करेंगे। बैठक में ग्रीस सरकार के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। बैठक में इस बात पर फैसला संभव है कि ग्रीस को राहत पैकेज दिया जाए या नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे जाएंगे। मोदी अभी किर्गिजिस्तान में हैं। इससे पहले मोदी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जा चुके हैं। वो रूस में ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भी हिस्सा ले चुके हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत आज भी होगी। अभिनेता उमर शरीफ को आज मिस्र की राजधानी काहिरा में दफन किया जाएगा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज दूसरा वनडे हरारे में खेला जाएगा। भारत ने पहला वनडे 4 रन से जीता था। बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे ढाका में खेला जाएगा।
और अब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख एस दुलत से रेहान फजल की एक बातचीत। उन्होंने दुलत से पूछा कि विरोधी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को रॉ के मुकाबले वो कैसा आंकते हैं। दुलत साहब की हाल में किताब आई है कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स।
ये बात मैंने कई कश्मीरियों से की है और उन्होंने कहा है कि भाई वहाँ बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े डेडिकेटेड हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको खास कश्मीर में इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन आती है, देखिए बड़ी ज़बरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन जिसको एक टारगेट को परस्यू करते हैं उसको छोड़ते नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे उसे खफा भी हो लेकिन उसको लगे रहते। हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी है कि भाई हिंदुस्तान ये कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ जो है, जो कमज़ोरी हमारे यहाँ है कि हम इतना लोगों को परस्यू नहीं करते हैं कि हम लोगों को यूज़ करके फिर छोड़ देते हैं।
1988 में आप कश्मीर में थे और वो शायद शुरुआत थी और बहुत बुरे दिन थे कश्मीर के लिए और भारत के लिए भी।
Yeah, that winter 88-89.
वो याद करिए किस तरह के दिन थे, आप बिल्कुल थिक ऑफ द थिंग्स में थे वहाँ।
देखिए ऐसा है कि कश्मीर एक ऐसी अजीब और गरीब जगह है जहाँ माहौल घंटों में बदल जाता है। तो हुआ क्या था कि मुफ्ती साहब जो यूनियन होम मिनिस्टर थे तब, उनकी बेटी अगवा हुई, तो फिर एक बहुत बड़ा मसला बना। फॉर्चुनेटली वो 5 दिन में हल हो गया, लेकिन उसमें थोड़ी सी कीमत हमें चुकानी पड़ी क्योंकि 5 लोग रिहा करने पड़े। तो वो मसला शायद सेटल हो जाता एक रिलीज़ के साथ, क्योंकि JKLF ये बच्चे थे, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, जज्बा ज़्यादा था। वो चाहते थे कि हमीद शेख जो उनका कुलीग है अस्पताल में, उसको गोली वोली लगी थी उसकी, कि उसको निकाला जाए। तो उसको अगर हम छोड़ देते तो सारा मसला 1-2 दिन में हल हो जाता। तो उससे एक बड़ा बूस्ट मिला JKLF को और मिलिटेंसी को। जगमोहन साहब जब दोबारा गवर्नर बन के आए जनवरी 19 को जम्मू पहुँचे और 21 को वो श्रीनगर आए, तो तब तक माहौल बहुत ख़राब हो चुका था। उन्होंने कहा बल्कि कि 26 जनवरी को ऐसे लग रहा था 1990 में कि शायद कश्मीर हमारे हाथ से जा रहा है। और दूसरी चीज़ उस टाइम ये भी हो रही थी कि पंडित जो हैं कश्मीरी पंडित, वो वैली को छोड़ रहे थे क्योंकि टारगेट हो रहे थे। तो थ्रेट बहुत बहुत बढ़ गया था।
और फिर किस तरह से बाउंस बैक किया आप लोगों ने, कब तक आप को लगा कि चीज़ें
नहीं वापस... बाउंस बैक करने में तो मेरा रोल नहीं था क्योंकि मैं खुद वहाँ से, मेरी छुट्टी हो गई थी, लेकिन जो प्रोफेशनल्स थे उन्होंने किया। और उसमें फिर उसके बाद फॉर्चुनेट बात यह हुई कि गैरी सक्सेना साहब गवर्नर बने, जिनको बहुत एक्सपीरियंस था इन मामलों का। तो फिर ग्रेजुअली सिचुएशन रिट्रीव हुई, उसमें फौज का रोल था, पैरामिलिट्री फोर्सेस का रोल था।
आपकी किताब में बहुत अच्छा इंसाइट है हुर्रियत के लीडर्स के ऊपर, और आपने खासतौर से अब्दुल गनी लोन को बहुत ऊंचा रेट किया, बल्कि आप कहते हैं परहैप्स द स्मार्टेस्ट पॉलिटिशियंस इन कश्मीर।
जी हाँ, मैं जब देखता हूँ, और कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरी कमज़ोरी है, हो सकता है, देखिए इंसान की कमज़ोरी भी होती है, कि आई एम पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ डॉक्टर फारूक। मैं समझता हूँ देर इज़ नोबडी टॉलर देन डॉक्टर साहब इन द वैली, बाकी पिग्मीज हैं। वो लोन साहब ही थे जिसमें एक ख़ास मैंने चमक देखी। तो एक ज़माना था, आपको याद है, जब डॉक्टर साहब को डिसमिस करने की बात चल रही थी 83-84 में, तो लोन साहब और डॉक्टर साहब बिल्कुल एक हो गए थे। बल्कि बेगम साहिबा ने कहीं कहा कि ये दोनों मेरे बेटे हैं। अब मुझे मुफ्ती साहब को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मुफ्ती साहब ऑल्सो हैज़ बीन कश्मीर में लीडर्स में, तो वो भी एक बड़े लीडर हैं, बहुत होशियार लीडर हैं।
आपकी किताब में एक और चीज़ पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, वो जो हाईजैक था 1999 का, और आप कैटेगोरिकली कहते हैं कि बड़ा गूफअप था, उसको थोड़ा सा एलोबरेट करिए।
मैं ये कहूँगा कि इन द गिवन सिचुएशन जो भी थी, उसमें सरकार ने जैसे हैंडल किया उससे बेहतर हैंडल नहीं किया जा सकता था। एंड रिजल्ट में सारे हमारे जो पैसेंजर थे सेफली घर आ गए। मैंने आखिर यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया है गूफ अप, तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना था कि अमृतसर में एक अपॉर्चुनिटी थी, वही एक अपॉर्चुनिटी थी 45-50 मिनट की, जब जहाज़ वहाँ था।
जो इनसाइट है, जो नेगोशिएशंस हो रहे थे, उसमें बहुत दिलचस्प बात है कि फारूक अब्दुल्ला जरगर को छोड़ने को तैयार नहीं थे।
देखिए नेगोशिएशन तो हो रहे थे कंधार में, ये तो मैं तो गया था डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि सरकार ने कहा आप जाके डॉक्टर साहब से बात करें, क्योंकि 3 में से 2 जम्मू कश्मीर में थे, एक जम्मू जेल में कहीं आसपास था, जम्मू या कोट बलवाल या कहाँ था, एक श्रीनगर में था। तो डॉक्टर साहब बहुत खफा थे कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है, आप लोग बेवकूफ़ी कर रहे हो, बहुत कुछ कहा उन्होंने 2.5-3 घंटे मुझे सुनना पड़ा। आखिर में उन्होंने कहा चल ले जाओ इन पाकिस्तानियों को, लेकिन इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ये किलर है, एंड द मोस्ट डिस्पिकेबल मोस्ट वर्स्ट टाइप ऑफ किलर, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने कहा सर ये زرگر کے بغیر تو ہوگا نہیں. تو بولا ہو گیا, ہوگا یا نہ ہو مجھے کیا ہے, میں نہیں چھوڑوں گا.
بھارتیہ خفیہ ایجنسی رو کے پور پرمکھ ایس دولت کا یہ انٹرویو آپ بی بی سی ہندی ڈاٹ کام پر بھی سن سکتے ہیں. ہمارے ریڈیو کے کارکرم بھی ہمارے ویب سائٹ پر سننے کے لیے اپلبدھ ہوتے ہیں. اور اب سنتے ہیں دن بھر کیا ہوا ومبلڈن میں.
ومبلڈن 2015 دن بھر کے کھیل کا لیکھا جوکھا.
ومبلڈن پر لندن سے بی بی سی ہندی سیوا کی وشیش پرستتی میں سواگت ہے آپ کا, میں ہوں اپورو کرشن. سرینا ولیمز ایک بار پھر ومبلڈن چیمپئن بن گئی ہیں. کل سینٹر کورٹ پر فائنل میں 33 سال کی امریکی کھلاڑی نے اسپین کی 21 ورشیہ گاروین مگروتھا کو سیدھے سیٹوں میں 6-4, 6-4 سے ہرا کر چھٹی بار خطاب اپنے نام کیا. 20th سیٹ کی مگروتھا نے سرینا کو تھوڑا پریشان ضرور کیا. پہلے سیٹ میں وہ 4-2 سے آگے تھیں اور دوسرے سیٹ میں 5-1 سے پچھڑنے کے بعد انہوں نے دو بار سروس بریک کر واپسی کی, مگر سرینا انتتہ بھاری پڑی. ہار کے بعد پہلی بار کسی گرینڈ سلیم پرتیوگتا کا فائنل کھیل رہے مگروتھا کی آنکھیں بھر آئیں, مگر انہوں نے سرینا کو جیت پر بدھائی دی.
I love to play in big courts. I mean, Grand Slam final for me is, you know, a dream come true.
مجھے بڑی پرتیوگتاؤں میں کھیلنا اچھا لگتا ہے. گرینڈ سلیم کا فائنل تو سپنا پورا ہونے کے جیسا ہے, اور میں سرینا کو بدھائی دیتی ہوں. وہ ابھی بھی ثابت کر رہی ہیں کہ وہ دنیا کی سروشریشٹھ کھلاڑی ہیں. گاروین مگروتھا کے شبد. دنیا کی پہلے نمبر کی کھلاڑی سرینا کی یہ جیت کئی طرح سے خاص تھی. سب سے پہلے تو انہوں نے سرینا سلیم بنایا, یعنی ایک کے بعد ایک 4 گرینڈ سلیم خطاب جیتے. انہوں نے 2002-03 میں بھی یہ کارنامہ کیا تھا, اور اسے دہرانے کی خوشی انہوں نے ان شبدوں میں جتائی. مجھے وشواس نہیں ہو رہا, میں یہاں ایک اور سرینا سلیم کے ساتھ کھڑی ہوں. اسے حاصل کرنے میں آپ سب درشکوں نے میری مدد کی, آپ سب کا بہت بہت دھنیواد. یہ میرے لیے گورو کی بات ہے کہ میں ایسے اوشوسنیہ کورٹ پر ایسے اچھے درشکوں کے بیچ اتنے سالوں سے کھیل رہی ہوں. سرینا ولیمز کے شبد. ویسے اب سرینا کی نگاہ ایک ہی سال میں 4 گرینڈ سلیم خطاب جیتنے پر ہوگی, اور جس کے لیے انہیں اگلے مہینے یو ایس اوپن جیتنا ہوگا. ایک اور بات یہ کہ اس بار کا ومبلڈن سرینا کا 21st گرینڈ سلیم ٹائٹل تھا, اور اب وہ اسٹیفی گراف کے 22 گرینڈ سلیم خطابوں سے کیول ایک خطاب دور ہے. اب ومبلڈن میں آج پروشوں کی خطابی ٹکر میں آمنے سامنے ہوں گے نوواک جوکوویچ اور روجر فیڈرر. جوکوویچ دنیا کے پہلے نمبر کے کھلاڑی ہیں, 8 گرینڈ سلیم خطابوں کے وجیتا, جن میں 2 ومبلڈن ٹائٹل شامل ہیں. آج وہ اپنا 4th ومبلڈن فائنل کھیلیں گے. نشچت روپ سے یہ ایک سپنے جیسا ہے. ومبلڈن میں کھیلنا, دنیا کے سب سے نامی ٹینس کورٹ پر اترنا, میری پوری کوشش رہتی ہے کہ میں اپنا سب سے اچھا کھیل دکھاؤں. یہ میری ذمہ داری بھی ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ میں فائنل تک آیا. نوواک جوکوویچ کے شبد. آج ساتھ ہی نظر رہے گی مکس ڈبلز کے فائنل پر بھی, جہاں بھارت کے لینڈر پیس سوئس کھلاڑی مارٹینا ہنگس کے ساتھ خطابی جنگ کے لیے کورٹ پر اتریں گے. سیمی فائنل میں پہلی سیڈ کی جوڑی کو پراست کرنے والی 7th سیڈ کی پیس ہنگس کی جوڑی آج فائنل میں 5th سیڈ کی آسٹریا کے الیگزینڈر پیا اور ہنگری کی ٹائما ویبوز کی جوڑی سے ٹکرائے گی. اپورو کرشن, بی بی سی ومبلڈن.
اور ایک بار پھر سے سنتے ہیں وشو سماچار.
بی بی سی سماچار. بھارت کی ثانیہ مرزا اور سوئٹزرلینڈ کی مارٹینا ہنگس کی جوڑی نے ومبلڈن میں مہیلاؤں کا ڈبلز خطاب جیت لیا ہے. یہ 28 سال کی ثانیہ کے لیے مہیلاؤں کا پہلا ڈبلز گرینڈ سلیم خطاب ہے, جبکہ 34 سال کی مارٹینا ہنگس کے لیے 10th گرینڈ سلیم ہے. یورو زون کے دیشوں کے وت منتری چاہتے ہیں کہ گریس راحت پیکج کے بدلے سدھار کرنے کے وعدوں کے پرتی اور گمبھیرتا دکھائے. بیلجیم کے برسلز میں شنیوار کو بیٹھک کے لیے پہنچے کئی منتریوں نے گریس کے خرچوں میں کٹوتی کے پرستاؤ کے عمل میں لانے پر شنکا ظاہر کی. بوسنیا کے راشٹرپتی نے سربیا کے پردھان منتری پر بوسنیا میں آیوجت ایک کاریکرم میں ہوئے حملے کی نندا کی ہے. سربیا کے پردھان منتری الیگزینڈر ووچیچ سیبرنیسا نرسموار کی 20th برسی پر آیوجت کاریکرم میں پہنچے تھے. ایران کے سروچ نیتا آیت اللہ علی خامنئی نے کہا ہے کہ امریکہ ویشوک گھمنڈ کا سچا پرتیک ہے. ان کی ٹپنی ایسے سمے آئی ہے جب ایران کے راجنائک وینا میں امریکہ اور انی طاقتوں کے ساتھ پرمانو کاریکرم کو لے کر بات چیت میں ویست ہیں. مصر کی راجدھانی قاہرہ میں اٹلی کے وانجی دوتاواس پر ہوئے حملے کے بعد مصر کے پردھان منتری ابراہیم محلب نے کہا ہے کہ ان کا دیش یدھ جیسے حالات کا سامنا کر رہا ہے. خود کو اسلامک اسٹیٹ کہنے والے سنگٹھن نے اس دھماکے کی ذمہ داری لی ہے. بی بی سی سماچار.
اسٹوڈیو مینیجر تھے دیواشیش کمار. ہمارے چاروں کاریکرم, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا, آپ ہمارے ویب سائٹ bbchindi.com پر سن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خبروں, وشلیشنوں اور بہترین تصویروں کے لیے بھی آئیں وہاں پر. اگلی ملاقات 8 بجے کاریکرم وشو بھارتی میں.